67 की वाणी, प्रातः क्लास 25 जनवरी। रिकॉर्ड चला है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वो सुनवा करके फिर उनका अर्थ कराना चाहिए। ऐसा करने से उनकी वाणी खुल जाएगी, मालूम पड़ेगा कहाँ तक इनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन और नीचे तक स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान चमकता है। बाप के पास भी यही ज्ञान है जो तुमको सुनाते रहते हैं। ये है बिल्कुल नया ज्ञान। क्या बाप जो ज्ञान सुनाते हैं वो बिल्कुल नई बात, नया ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य गुरु पुराना ज्ञान सुनाते हैं। ये पहचान है इस बात की, इस बात की पहचान है कि मनुष्य गुरु पुरानी पुरानी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, नई बात कोई नहीं बताते। और सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नित नई ज्ञान की बातें सुनाते हैं। उदयधारी गुरु कोई शास्त्रों की रटी रटाई बातें सुनाते हैं। वो गुरु चाहे 500 करोड़ की दुनिया के गुरु हो, चाहे 500 करोड़ की जो मनुष्य आत्माओं की दुनिया है उसके आधार मूर्त जड़े हो, और चाहे उन जड़ों के जो बीज है उन बीजों में से कोई भी देहधारी धर्म गुरु हो, वो सब पुरानी पुरानी बातें सुनाते हैं। नया ज्ञान कोई सुना ही नहीं सकता, नई बातें कोई क्रिएट कर नहीं सकता। बल साथ साथ में नाम है परंतु नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहां तो बाप बिल्कुल सिंपल समझाते हैं, भगवान वाच मुझे याद करो क्योंकि मैं ही पतित पावन हूं और दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र अगर पतितों को पावन बनाने वाला होता तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कोई तो पावन बना होता, पावन माना देवता, पतित माना मनुष्य, देवता तो कोई बना नहीं। देवता ही सृष्टि होती है सतयुग में, राम कृष्ण की दुनिया में, और वो राम कृष्ण की दुनिया मैं ही आकर के स्थापन करता हूं। जब कलयुग में सब पतित हो जाते हैं तो सब पतितों को आकर के मैं पावन बनाता हूं। इतनी सिंपल बात समझाते हैं, कभी कृष्ण व विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कृष्ण नारायण का बचपन का रूप है। नारायण तो देवता है तो कृष्ण भी देवता हुआ। गाते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, तो देवताओं की रचना रचने वाला तो सुप्रीम सोल बाप है, जो मनुष्य को देवता बनाता है। अगर कहे विष्णु पतित पावन है, तो विष्णु कोई चार भुजाओं का देवता होता नहीं है। ये तो चार आत्माएं जो सृष्टि निर्माण के कार्य में सुप्रीम सोल बाप शिव का सबसे जास्ती सहयोगी बनती है और संगठित रूप में सहयोगी बनती है, उनकी यादगार विष्णु दिखाया हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि विष्णु कोई भगवान है और चार हाथों का कोई देवता है जो भगवान का रूप बन जाता है। विष्णु इस सारी सृष्टि में से विष को समाप्त करने वाला है। नाम ही है विष्णु, क्या नो विष, नो विष एटल, सारी सृष्टि में से विष का नाम निशान खलास हो जाता है। ये ऐसा संगठित चार पांच आत्माओं की पार्ट की यादगार है, और ऐसा पार्ट उनको बजाना कौन सिखाता है? राम, कृष्ण और उनकी सहयोगी भुजाएं सीता और राधा, ये आत्माएं मिलजुल करके सारी सृष्टि में से विष का हनन करती है, निमित्त बनती है। उस विष को मिटाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है। जो विष को पीने वाला है, इस सारी मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य मात्र के अंदर विष भरा हुआ है, विषय विकारों का, वो सारा पी जाता है। तो विष्णु को भी तुम भगवान नहीं कहेंगे, पतित पावन नहीं कहेंगे और शंकर को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि शंकर अगर पतित पावन होता तो वो किसकी याद में बैठा हुआ है? उसको याद करने की क्या दरकार? उसको तपस्या में बैठने की दरकार है? तपस्या में बैठने की दरकार उसी को है जो पतित है। पतित देवताएं होते नहीं है। जब पतित होते हैं द्वापर युग से तो याद करते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं पावन होते हैं तो कोई को याद नहीं करते हैं, वो आत्मिक स्मृति में रहते हैं। आत्मिक स्मृति माना स्व की स्मृति। तो शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, क्योंकि सूक्ष्म वतन वासी है फरिश्ता। फरिश्ता का अर्थ ही होता है जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। फर्श की दुनिया दैहिक दुनिया है, देह और देह के संबंधों की दुनिया से उनका अटैचमेंट टूटा हुआ होता है। तो सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को भी पतित पावन नहीं कहते हो। जब सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ताएं ही पतित पावन नहीं होते हैं, तो सूक्ष्म वतन से जो नीचे स्टेज का मनुष्य लोक है, शाकाहारी लोग हैं, वहां के रहने वाले मनुष्य कैसे पतित पावन हो सकते हैं? कोई भी गुरु गुसाई, जो भी मनुष्य गुरु है, वो पतित पावन नहीं हो सकते। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, इनकी बुद्धि में है, जो परमात्मा बाप के सन्मुख बैठ करके सुनते हैं उनकी बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्यू करना ठीक नहीं है, बहुत वाद विवाद हो जाता है, यहां तक भी ला वाद विवाद हो जाता है कि एक दो को लाठियां मार करके लड़ पड़ते हैं। इस बात की शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग तो होती है ना, तो रिहर्सल ये कैसे होती है? वो भक्ति मार्ग की लड़ाई झगड़े की, जब दो आपस में शास्त्रों का वाद विवाद करते हैं तो इतना क्रोध में आ जाते हैं कि डंडे लेकर एक दूसरे की पिटाई करने लग पड़ते हैं। यहां शूटिंग कैसे होती है? हैं? यहाँ जो पांडव हैं, वो तो डंडा उठावेंगे ही नहीं, ज्ञान का डंडा भी उठा करके किसी की पिटाई नहीं कर सकते। उनको पढ़ाई पढ़ाई जाती है, न दुख लेना है न दुख देना है, फिर कौन लड़ते हैं? जो कौरव है अर्थात जो यवन है, वो आपस में लड़ पड़ते हैं, तो कौरवों और यवनों की लड़ाई होती है। कौरव है भारतवासी आर्य समाजी और यवन है मुसलमान, जो मुसलमानों की बीज रूप या आधार मूर्त आत्माएं हैं, या जो कौरवों की बीज रूप आधार मूर्त आत्माएं हैं, वो देहभान में आती है और लड़ाइयां लड़ने झगड़ने पड़ती है। तो तुम बच्चों को शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। तुम्हारे शास्त्र हैं मुरली, जो कागज के पत्ते बन चुके हैं, जिसे बाबा कहते हैं थर्ड क्लास। तो वो थर्ड क्लास जो ज्ञान है, उनकी बातों को पकड़ करके जास्ती आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। तुम तो जानते हो मूल बात है आत्माभिमानी बनने की। कोई को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के थोड़ा भी समझावेंगे तो आर्गू करने की दरकार नहीं पड़ेगी। अपन को आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखना है। बाप की याद में उनको सर्च लाइट देना है तो वो आप ही शांत हो जाएंगे। ये श्रीमत है मुख्य। कौन सी? अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करना, बाकी तो डिटेल की बातें हैं। देखो बीज कितना छोटा होता है और झाड़ का बहुत विस्तार हो जाता है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे ये सारा ज्ञान यहां भी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जिसे हम कहते हैं परमात्मा, इसमें सुप्रीम सोल बाप परम पिता प्रवेश करके पाठ बजाता है, उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है, वो भी सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। उस बीज में ही सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष होता है। तुम्हारी बुद्धि में बीज की भी पहचान है और झाड़ की भी पहचान है। बीज भी बुद्धि में बैठ गया है और सारे झाड़ की नॉलेज भी बुद्धि में यथार्थ बैठ गई। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई ऐसा ज्ञान समझा नहीं सकता। तुम माना कौन? तुम जैसा समझा सकते हो वैसा वो नहीं समझा सकते, ये भी नहीं समझा सकते। ये माना कौन? ब्रह्मा नहीं समझा सकते, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी नहीं समझा सकते, और दुनिया वाले जो बहुत दूर है, तुम्हारी मेंटेलिटी के मुकाबले बहुत दूर है, वो भी नहीं समझा सकते। झाड़ की आयु देखो कितनी लंबी लिख दी है, लाखों वर्ष की झाड़ की आयु लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं, बीज व झाड़ अथवा ड्रामा का चक्कर अभी पूरा होता है, पूरा राज तुमको समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, कोई नया आवे और बाप महिमा करे कि सुदर्शन चक्रधारी को कोई समझा न सके, क्योंकि वो तो अपन को बच्चा ही नहीं समझते हैं। यहां तो बाप गुप्त है, गुप्त पार्ट बजाए रहा है, बाप भी गुप्त है और बाप की नॉलेज भी गुप्त है, और बाप की नॉलेज से क्या वर्षा मिलता है? बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से क्या पद मिलता है? वो भी गुप्त है। नया कोई ये सुन करके मुझे पढ़ेंगे, इसलिए जो भी नए नए आते हैं उनको पहले 7 दिन की भट्टी करानी पड़े, 7 दिन भट्टी में बिठाया जाता है। इसलिए भागवत रामायण आदि में 7 दिन बिठाते हैं। भागवत कथा करेंगे, रामायण की कथा करेंगे, 7 दिन लगाते। ये रसम रिवाज भक्ति मार्ग में संगम युग की चली आई है। वास्तव में तो वहां तो 2-4 घंटे सुनकर के भाग जाते हैं, वहां कोई 7 दिन की भट्टी नहीं कराई जाती है। 7 दिन की भट्टी तो यहां कराई जाती है, पूरा 7 दिन भट्टी में रखा जाता है। तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है, विकारों की खाद भरी हुई है, वो निकल जाती है, सदा के लिए नहीं निकल जाती है, बेसिकली निकल जाती है। और जब कचरा निकल जाता है तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि में बाप का ज्ञान आसानी से बैठता है, बुद्धि योग बाप के साथ लटक जाता है। यहां इस दुनिया में सब रोगी है, सत्युग में ये रोग नहीं होते हैं, वहां कोई बीमारी नहीं पड़ती। ये रोग और बीमारियां जो आत्मा में लगी हुई है, वो आधा कल्प की बीमारियां लगी हुई है। कौन सी बीमारियां? पांच विकारों की। ये पांच विकार ही मनुष्यों को देखो दुख देते हैं, और इन पांच विकारों से ही मनुष्य बीमार हो पड़ते हैं। ये पांच विकारों का रोग बड़ा भारी है। वो शरीर की बीमारियां तो इतनी भारी नहीं होती है जो 63 जन्म चलती रहे। वहां सत्युग में ये बीमारियां नहीं होती है। यहां तुम देही अभिमानी बन करके रहते हो और ये जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही नई दुनिया में साक्षात्कार हो जाता है कि हमको कहां जन्म लेना है, कौन से मां बाप के पास जन्म लेना है। वहां अकाले मौत कभी नहीं होती। जो स्थूल रूप में सतयुग और त्रेता युग की रचना होती है, नई दुनिया बनती है, वहां भी अकाले मौत नहीं होती। और परमात्मा बाप जो ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग रचते हैं, जिसे कहें संगम युगी स्वर्ग, वहां भी कोई की अकाले मौत नहीं होती। ये है बेहद की बात। यहां तो अभी अकाले मौत होती रहती है। अभी अभी अच्छे खासे ज्ञान में चलते हैं, निश्चय बुद्धि है, बाप को अपना बाप मानते हैं, और अभी अभी पता नहीं क्या हो जाता है, ज्ञान को छोड़ देते हैं, ग्लानी करने लग पड़ते हैं, बाप को ही फारकती दे देते। तो ऐसों को कहा जाता है निश्चय बुद्धि विनश्यते। वहां तो शरीर विनाश होते हैं और यहां पद का विनाश हो जाता है। तो अभी वो स्वर्णिम संगम युग आने वाला है, नई दुनिया सामने खड़ी है, अभी अपन को देखना है। कहीं हमारे अंदर तो अनिश्चय बुद्धि के बीज नहीं पड़े हुए, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि तो नहीं होता हूं। अगर यहां घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होता हूं, क्योंकि कलयुग अंत की शूटिंग का ये अंतिम चरण चल रहा है, उसमें भी संगम चल रहा है, अंत मते सो गते होने वाली है। अगर यहां घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि होते रहेंगे, वहां कलयुग जो आवेगा वहां कोई भी जन्म में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, प्रजा वर्ग में आते रहेंगे। अभी तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है, जीत पहनाने के लिए कौन सा गुरु चाहिए? साइंस की पढ़ाई पढ़ाने वाला साइंस का टीचर चाहिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने वाला इंजीनियर चाहिए, एक्सपर्ट। तो ये जो अकाले मौत हो रही है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, आज एक को बाप मानते हैं, कल दूसरा बाप बना लेते हैं। ऐसे लौकिक दुनिया में होता है। आज इस जीवन में एक बाप के बच्चे हैं, बल्दियत एक लिखते हैं और शरीर छोड़ जाते हैं तो दूसरा बाप बन जाता है। ऐसे यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी घड़ी घड़ी अकाले मौत हो रही है, और जब फाइनल परीक्षा होगी तो मौत का बाजार लगेगा। इस मौत से बचने के लिए, बचाने के लिए अकाल मूर्त बाप आता है। अकाल मूर्त माना जिसको कोई काल खा नहीं सकता, माना वो जब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है उसको कोई अनिश्चय बुद्धि रूपी काल खा नहीं सकता। ऐसा टीचर तुमको प्रैक्टिकल में मिलता है। और सब आत्माओं की, जो भी मनुष्य मात्र आत्मा है, शूटिंग पीरियड में शूटिंग कर रही है, रिहर्सल कर रही है, चाहे वो बीज रूप हो चाहे आधार मूर्त हो, सबकी मौत होती रहती है। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्कर में कौन सी आत्मा आती है? हैं? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल वो तो शरीर छोड़ गई। शरीर छोड़ जाने के बाद परमधाम वापस चली गई या इसी दुनिया में पार्ट बजाती है? इसी दुनिया में पार्ट बजाई रही है। कैसे पार्ट बजाती है? जैसे शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, लेकिन वो तो सदा ही शिव है, सदैव ज्योति बिंदु के रूप में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, और उनको कभी संग का रंग भी लगता नहीं है। और ब्रह्मा की सोल प्रवेश तो करती है लेकिन संग का रंग भी उसे जरूर लगता है। जिसमें भी प्रवेश करती है, जैसी आत्मा का भी संग होता है वैसा ही रंग हो जाता है। कोई विधर्मी आत्मा में प्रवेश करेगी तो विधर्मियों के संग में रंग जाती है। और सुप्रीम सोल बाप जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, अगर उसमें बीज रूप बनकर के प्रवेश करती है तो तुरंत बीज रूप स्टेज बन जाती है। जैसा संग वैसा संग रंग उस आत्मा को सबसे जास्ती लगता है। क्यों? ब्रह्मा को सबसे जास्ती संग का रंग क्यों लगता है? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसको सबसे जास्ती संग का रंग क्यों नहीं लगता? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसको सबसे जास्ती संग का रंग क्यों नहीं लगता? संघ का रंग तो दोनों को लगता है, ब्रह्मा को भी लगता है और शंकर को भी लगता है, माना कृष्ण की आत्मा को भी लगता है और राम की आत्मा को भी लगता है। अंतर क्या है? जो राम वाली आत्मा है वो बाप है, बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली है, और कृष्ण की सोल मृदुल पार्ट बजाने वाली माँ का पार्ट बजाती है। कन्याएं माताएं कोमल स्वभाव की होती है, स्वभाव ही कोमल नहीं होता है, भाव भी कोमल होता है, शरीर भी कोमल होता है, हर तरीके से कोमलता भरी हुई है। इसलिए भारतीय परंपरा में कन्याओं माताओं को संग दोष से बहुत बताया जाता है। जितनी भारत में कन्याओं माताओं की संग दोष से सुरक्षा की जाती है उतना दुनिया के किसी भी देश में सुरक्षा नहीं की जाती। जितना जितना उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, विविचार से बचाएंगे, विविचार दोष से बचाएंगे, उतना उतना सुख शांति बढ़ती रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और जब घर की धरित्री अपवित्र होना शुरू होती है, संग का रंग लगना शुरू होता है, तो घर बिगड़ जाता है। एक घर बिगड़ता है तो गांव बिगड़ जाता है। कहते हैं तालाब में एक सड़ी मछली हो तो सारा तालाब गंध से भर जाता है। तो ये संग का रंग दुस्संग बड़ी तेजी से फैलता है। इसलिए अभी से ये संस्कार पक्का होना चाहिए भारतवासियों के अंदर, खास चाहे कन्याएं माताएं हो और चाहे भाई हो, चाहे कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, कुमारी हो या अधर कुमारी हो, अपने को हर हालत में संग दोष से जरूर बचाना है। ये संग दोष सत्यानाश कर देता है। विधर्मियों के संग के रंग से अपन को जरूर बचाना है। ऐसे नहीं कि द्वापर युग से ही विधर्मियों का संग का रंग लगता है, संगम युग में नहीं लगता है। नहीं, द्वापर युग से जो विधर्मी आते हैं उनकी तो रूपरेखा, उनका भाव स्वभाव, उनका चेहरा मोहरा स्पष्ट पहचान में आ जाता है। इस्लामियों की अब पहनाओ, लंबाई चौड़ाई रंग आदि देख करके कोई भी पहचान सकता है ये इस्लामी है। बौद्धियों का गोल चेहरा, चिकना शरीर कोई भी देख करके समझ सकता है कि ये बौद्ध धर्म का है, बौद्ध धर्म खंड का है। मुस्लिम धर्म का होगा वो भी पहचान में आवेगा। लेकिन यहां संगम युग में जब शूटिंग पीरियड चलती है, रिहर्सल होती है, तो वो ही पहचान सकते हैं जो ज्ञानी आत्माएं होंगी। ज्ञान सूर्य बाप के डायरेक्ट बच्चे होंगे,
अगर डायरेक्ट बाप से कनेक्शन नहीं होगा, कोई दूसरे देहधारी धर्म गुरुओं से कनेक्शन बुद्धि का जुटा हुआ होगा, तो उनकी पहचान में नहीं आवेगा, परख शक्ति नहीं होगी, और परख शक्ति न होने के कारण निर्णय शक्ति भी नहीं होगी, नहीं पहचान सकेंगे इस ब्राह्मण परिवार में कौन सा ब्राह्मण किस कुरी का है, ऊंची कुरी का है या नीची कुरी का है। क्योंकि जैसे दुनिया में 9-10 धर्म फैले हुए हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया से ब्राह्मणों की 9 कैटेगरीज प्रत्यक्ष होती है। जो भक्ति मार्ग में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है, एक से एक श्रेष्ठ है और एक से एक निष्कष्ट है। इसलिए बेसिक नॉलेज में भी ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने बोला कि दुनिया का अच्छे से अच्छा देखना हो तो यहां देखो, और दुनिया का भ्रष्ट से भ्रष्ट स्वभाव संस्कार का देखना हो तो यहां देखो। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज वालों की बात नहीं है, एडवांस नॉलेज में भी जो बीज रूप आत्माएं हैं, उन बीज रूप आत्माओं में भी ये बात लागू होती है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और भ्रष्ट से भ्रष्ट है, अच्छे अच्छे स्वधर्मी भी हैं और नीचते नीचे विधर्मी भी हैं, विदेशी भी हैं। अगर यहां उनके संग के रंग में आ गए तो उनका असर जरूर पड़ जाता है। जो बीज रूप स्टेज में टिकने वाली आत्माएं हैं, उनके ऊपर थोड़ा असर पड़ेगा, जल्दी धुल जाएगा, लेकिन जो साकारी स्टेज में जाती रहती वो संग के रंग को जल्दी ग्रहण करते हैं और जल्दी छोड़ नहीं पाते। जो पुरुष चोला है वो बाप होता है, बाप बीज रूप स्टेज वाला होता है, और जो स्त्री चोला है वो धरणी गाई जाती है। धरणी में एक तरफ धारणा भी जास्ती होती है अगर प्योरिटी है तो, और अगर संग के रंग में आ गई, विधर्मियों के संग के रंग में आ गई या विदेशियों के संग के रंग में आ गई तो धारणा लोप हो जाएगी, धारणा भी जास्ती होती है और देह अभिमान भी जास्ती होता है। पुरुषों में इतना देह का होना नहीं होता है, कन्याओं माताओं में देह का होना बहुत होता है और देह का मोह भी जास्ती होता है। तो एक तरफ फायदा भी है, दूसरी तरफ नुकसान भी है। तो फायदे का सौदा कर लेना चाहिए, ये घाटे का सौदा करना है। फायदे का सौदा करना चाहिए, फायदे का सौदा करेंगे तो जो जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। अगर ये फायदे का सौदा नहीं किया और संग के रंग में आते रहे तो नारी से नारायणी नहीं बन सकेंगे। क्या नारायणी माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा, भारत में होती है, दूसरी ओर जगदम्बा की भी पूजा भारत में होती है। अंतर क्या है दोनों की पूजाओं में? अंतर ये है कि लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में पूजन होती है, तो लक्ष्मी के साथ नारायण भी आ जाता है, और जगदम्बा की अकेले रूप की पूजा होती है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रूप है, प्रवृत्ति मार्ग का रूप है, श्रेष्ठ रूप है लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की पूजा अब भी विचारी वाइब्रेशन फैलावेगी, और सिंगल देवी की पूजा अगर वहां विधर्मी और विदेशी घुसे हुए हैं तो बेविचारी वाइब्रेशन फैला देगी। इसलिए मुरली में बोला है सिंगल देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय, उनकी तो इच्छा होती है ये डबल बन के हमारे सामने न रहे, युगल बन के हमको देखने में ना आए। कैसे देखने में आए? जैसे रावण चाहता था। रावण क्या चाहता था? कि सीता अकेली रह जाए, हमको मौका मिल जाए और राम भाग जाए। तो जो भी सिंगल देवी के पुजारी है वो सब रावण संप्रदाय है। वो रावण संप्रदाय के चंबे में अगर कन्याएं माताएं आ गई तो जन्म जन्मांतर का रोना रोना की शूटिंग होगी, दुखधाम की शूटिंग हो जाएगी, सुखधाम की शूटिंग नहीं होगी। इसलिए तीन मूर्तियां दिखाई गई हैं, तीन धाम बताए गए हैं। तीनों ही मूर्तियां तीन धाम की अधिपति के रूप में बैठी हुई सूक्ष्म वतन में। कौन कौन से धाम है तीन? सबसे नीचे है दुखधाम, मीडियम स्थिति में है सुखधाम, और सबसे ऊंची स्टेज में है शांति धाम। शांति देवा कहा जाता है। ऐसी ऊंची स्टेज हमको अभी पकड़नी है, तो किसका संग करना चाहिए? शांति देवा का संग करेंगे, जिस देवा में सुप्रीम सोल बाप मुकर रूप से कार्य करता है, वो सदा ही शांति धाम का वासी है। इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है, विधर्मियों और सुधर्मी आत्माओं के संग के रंग में आता है, क्लोज कंटेक्ट में आता है, तो भी उसके ऊपर संग का रंग नहीं लगता। उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा उपराम स्टेज में रहती है, सदा ही उपराम। इसलिए सदा शिव कहा जाता है। तो ऐसे सदा शिव का संग करेंगे तो हम भी ऊंची स्टेज में रहेंगे। यहां संगम युग में जितना ही इस दुनिया से उपराम रहेंगे, ऊंची स्टेज में रहेंगे, बाप की छत्र छाया महसूस करती रहेंगे। अभी आगे आने वाला जो टाइम है, कयामत बरपा होने वाली है, दुनिया में हाहाकार होने वाला है। ऐसे टाइम में हर आत्मा को उस ऊंचते ऊंच बाप की छत्र छाया की जरूरत है। ऊंचे से ऊंचे की छत्र छाया में रहना, माना जन्म जन्मांतर के लिए अपने सुख की शांति की नूद करना। विष्णु भी है मीडियम कैटेगरी में, सुखदेवा है लेकिन शांति देवा नहीं कहा जाता है। शांति धाम में ले जाने के लिए शांति देवा चाहिए, और जब तक कोई शांत में नहीं जाता, आत्मा शांत स्वरूप का अनुभव नहीं करती, तब तक कितना भी दुनियावी सुखों का अनुभव करे, कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितने भी सुखमयी पदार्थों का अनुभव करने वाला बन जाए, लेकिन उसको शांति नहीं मिल सकती। और जब तक शांति नहीं मिलती तब तक सच्चा सुख भी महसूस नहीं हो सकता। और सुखदेवा जो विष्णु का पार्ट है उसमें भी शांति तो समाई हुई है। सुख और शांति इस दुनिया में ये युगल जोड़ी है। दुख जो है वो अशांति देता है। दुख की दुनिया हम अपने लिए संग के रंग से क्रिएट करते हैं, तो चाहे तो अच्छा संग लें और चाहे तो बुरा संग लें। संग तारे कुसंग बोरे, ये पाठ अब ही पढ़ाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो गायन करते हैं सत्संग का, लेकिन जानते नहीं है कि सत्य क्या चीज है और सत्य है कौन। साधु संन्यासी महात्माओं धर्म पिताओं का संग बैठ करके करते, उन देहदारियों के संग से कुसंग में गिरते हैं। सत्संग की जगह लत संग में गिरते हैं, दुनिया की लात खाते रहते हैं। पंजाबी में कहते हैं छित्तर खाना, इधर धक्का खाया उधर धक्का खाया, ये भक्ति मार्ग के धक्के खाते ही रहते। इसलिए बाप कहते हैं भक्ति है व्यभिचारी, भक्ति जब तामसी बनती है तो अनेकों की पूजा करने लग पड़ते हैं। भक्ति भी सात्विक स्टेज में द्वापर के आदि में होती है, और भक्ति जब विविचारी बनती है, अनेकों की भक्ति करते हैं, तो दुख अशांति बढ़ती चली जाती। अभी बाप आए हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, अंधश्रद्धा युक्त जो दुनिया में भक्ति चलती है उसका भी ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि भक्ति रावण से आती है, ज्ञान एक राम से आता है, क्योंकि ज्ञान रोशनी है, रोशनी सूर्य से आती है। तो सूर्यवंशी बनना चाहिए ना, चंद्रवंशी क्यों बनना चाहिए, चंद्रमा तो सूर्य से रोशनी लेता है, लेकिन बुद्धि में बैठा हुआ है भक्ति मार्ग। 63 जन्मों का पक्का संस्कार। गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज साकार स्वरूप है। ये कृष्ण ही गीता का साकार में भगवान है, और कोई भी साकार में भगवान नहीं हो सकता। जब ऐसी अंधश्रद्धा बुद्धि में बैठ जाती है कि ज्ञान चंद्रमा ही गीता का साकार भगवान है, क्योंकि शीतलता प्रदान करता है, और सूर्य क्या करता है, सूर्य में इतनी तीक्ष्णता है कि वो जलाए देता है। क्या जलाता है? जो कीड़े मकोड़ों की स्वभाव वाली आत्माएं हैं, दुर्गंध है, कचरा है, उसको सुखा देता है। चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं और दुर्गंध भी पलती रहती है। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है? ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन शुरू हो गया है? रात चल रही है। ब्राह्मणों की आधारभूत दुनिया में तो रात है ही है, लेकिन जो एडवांस वाले हैं, जो अपन को बीज रूप आत्मा समझते हैं, उनकी दुनिया में भी ब्रह्मा की रात चल रही है। सभी के लिए क्या 500-700 करोड़ सभी मनुष्य मात्र के लिए है? बीज रूप में सभी के लिए है या 2-4 ऐसे भी है जिनके लिए नहीं है? पूछा जा रहा है। ब्रह्मा की रात्रि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए है या कोई के लिए है, कोई के लिए नहीं है? सूर्यवंशी के लिए ज्ञान की रात्रि नहीं है, वो सदैव निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं, सदाशिव होकर रहते हैं। सदाशिव होकर के तो नहीं रहते, कभी आत्म की स्थिति में रहते हैं, कभी संघ के रंग में भी आते हैं। अनिश्चय बुद्धि सदा काल के लिए नष्ट हो जाए ऐसा नहीं है। तो बाप पहचान देते हैं क्या करना है, कि चंद्रमा और सूर्य अक्सर ऐसे होता है, जब बादलों से ढका हुआ सूर्य होता है तो चंद्रमा की तरह शीतल दिखाई पड़ता है, क्योंकि माया भी बादलों से ढका हुआ है, तो कोई उसे चंद्रमा समझ ले, ये भी चंद्रवंशी है। जैसे मां पति से प्रभावित हो जाती है, पति नहीं होता है, खुदा न खास्ता शरीर छोड़ जाता है, तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे प्रभावित हो जाती है, और प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बन करके उनकी सेवा करती है। ऐसे बाप का पार्ट तो नहीं हो सकता है। बाप अगर बाप के रूप में है तो रचयिता है, रचयिता रचना के कंट्रोल में नहीं आ सकता। अगर रचयिता रचना के कंट्रोल में आ जाता है तो वो रचयिता बाप नहीं है। बाप बच्चों को वर्षा देने वाला है और यहाँ तो बेहद का बाप है, सुख शांति का बेहद का वर्षा देने वाला है। सतयुग त्रेता रूपी आधा कल्प 2500 वर्ष का लंबे समय का वर्षा देने वाला है। इतना लंबा वर्षा और कोई बाप दुनिया में न दिया है और न देगा। तो ऐसे ज्ञान सूर्य बाप को पहचानने में, जानने में, मानने में और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने में जी जान से पुरुषार्थ करना, पढ़ाई पढ़ना, संघ के रंग में आना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सहज है क्योंकि संगम युग है, संगम युग मुश्किल को सहज करने वाला युग है, क्योंकि मुश्किल को सहज करने वाला भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। अभी इस टाइम में अगर मुश्किल को सहज न कर पाया तो 63 जन्म भी मुश्किलातों से घिरे हुए रहेंगे, कोई सहयोगी नहीं बनेगा। इसलिए खास करके कन्या माताओं को, जिनको कलयुग में अबला कहा जाता है, उनको संग के रंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। दुष्ट संग जन दे विधाता, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं। अब कोई विधाता ब्रह्मा या भगवान दुष्ट संग थोड़ा ही देता है। अभी संगम युग में जानबूझ करके, हठ करके, जबरियन अपने अहंकार को दिखाने के लिए कोई कोई आत्माएं वो रास्ता पकड़ लेती है। अगर संगम युग में भी हम हठ करते रहे, हठयोगी बने रहे और सच्ची बात को न जाना, सच्चे बाप को न पहचाना और उसके बताए हुए डायरेक्शन पर अमल न किया तो जन्म जन्मांतर के लिए दुखधाम में रहेंगे। 21 जन्म की तो सुख शांति मिलेगी लेकिन मन का लास्ट वाला होगा, माला के मणकों में लास्ट नंबर होता जाएगा। बाप के नजदीक भी हो सकता है लेकिन दुख अशांति से भरा पूरा जीवन वो अच्छा नहीं है। बाप की नजर हर बच्चे पर रहती है लेकिन बाप कोई के भाग्य को बदल नहीं सकता। अपना भाग्य बदलना और श्रेष्ठ बनाना अथवा अपना भाग्य नीचे गिराना, यह हर आत्मा की अपनी मुट्ठी में है। इसमें ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता, जिसे विधाता कहा जाता है। प्रजापिता भी कुछ नहीं कर सकता और सुप्रीम सोल बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बोला है कि एक हिम्मत का कदम आत्मा को उठाना है। आत्मा परमात्मा बाप का बच्चा है, बाप तो बांधा हुआ है सहयोग देने के लिए लेकिन बच्चा हिम्मत ही न करे तो बाप मददगार कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। ओम शांति।